पृष्ठ संख्या 93, अध्याय 12, ग्वालियर घराना। कुदौ सिंह महाराज का काल भारत के तालवाद्य का स्वर्ण युग कहा जा सकता है, क्योंकि संयोग से उसी काल में 50 वर्ष के बीच कुदौ सिंह के उपरांत बाबू जोत सिंह जी नाना पान से ग्वालियर के श्री जोरावर सिंह, लखनऊ के उस्ताद मोदू खां बक्सू खां, अजराना के उस्ताद कल्लू खां, उस्ताद मीरू खां, फरुखाबाद के उस्ताद हाजी विलायत अली खां तथा बनारस के पंडित राम साहेब जी जैसे कलाकार व्यक्ति पैदा हुए, जिनकी कला साधना एवं विद्वता से भारतवर्ष में अनेक परंपराएं चल पड़ी, जो विविध घरानों में परिवर्तित होकर समृद्ध एवं विस्तृत हुई। पखावज की ग्वालियर परंपरा के आद्य संस्थापक जोरावर सिंह जी माने जाते हैं। वे कुदौ सिंह के समकालीन एवं उनके मित्र थे। कुछ विद्वानों का मत है कि वे भी लाला भवानी दीन के शिष्य थे, किंतु इस विषय में कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता और उनके गुरु के विषय में भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। ग्वालियर परंपरा के कलाकार एवं वंशज अपने को स्वतंत्र परंपरा का मानते हैं और अपना संबंध भवानी दीन या किसी भी दूसरे कलाकार के साथ स्वीकार नहीं करते। जोरावर सिंह ग्वालियर के महाराज जानकोजी राव सिंधिया के आश्रित कलाकार थे। महाराज उन्हें बहुत प्यार करते थे। राजाश्रय मिलने के कारण वे ग्वालियर में बस गए और जीवन के अंतिम क्षण तक वहीं रहे। इसीलिए इनकी परंपरा ग्वालियर परंपरा के नाम से प्रचलित हुई। यद्यपि ग्वालियर परंपरा को हम विस्तृत घराना नहीं कह सकते, तथापि जोरावर सिंह के बाद उनकी शैली वंश परंपरागत एवं शिष्य परंपरागत 4-5 पीढ़ियों से चली आ रही है, अतः यहाँ इसका उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है। श्री जोरावर सिंह ने अपने पुत्र श्री सुखदेव सिंह को पखावज की उत्तम शिक्षा दी। पिता के समान उन्हें भी ग्वालियर दरबार के कलाकार होने का सौभाग्य मिला। श्री सुखदेव सिंह के पुत्र एवं देश के सुप्रसिद्ध पखावज वादक श्री पर्वत सिंह अपने पिता से भी सवाए निकले। बाल्यावस्था में ही वे अपने पिता से शिक्षा ग्रहण करके तैयार हो गए थे तथा ग्वालियर दरबार में कलाकार का स्थान भी पा चुके थे। उन दिनों ग्वालियर दरबार में अनेक गुणी कलाकार आते थे। उनमें से बहुतों के साथ संगत करने का अवसर श्री पर्वत सिंह को मिलता रहा, जिससे उनके ज्ञान एवं अनुभव में वृद्धि हुई। उस्ताद अल्लादिया खां, पंडित विष्णु दिगंबर सितारा सितारवादक, उस्ताद बरकत उल्ला खां, उस्ताद नजीर खां, पंडित भास्कर बुआ बखले आदि अनेक नामी कलाकारों की संगति करने का उन्हें स्वतः अवसर मिलता गया। वे 15 वर्षों तक मुंबई में भी रहे, अतः उनकी कला को निखरने का और भी अवसर मिला। पिता के देहांत के पश्चात वे ग्वालियर आ गए और श्रीमंत माधव राव जी के दरबारी हो गए। वहाँ उस्ताद हाफिज अली खां, पंडित कृष्णराव शंकर पंडित, उस्ताद उमराव खां आदि कलाकारों से उनका मेलजोल बढ़ता गया। उन दिनों उस्ताद हाफिज अली खां सरोद और पर्वत सिंह पखावज की जोड़ी सारे देश में प्रसिद्ध हो गई। पृष्ठ संख्या 94। पर्वत सिंह के छोटे भाई कन्हैया भी निपुण पखावज वादक थे। पर्वत सिंह जी पखावज के साथ साथ तबला वादन में भी दक्ष थे। उनके तीनों पुत्र सर्वश्री विजय सिंह, माधो सिंह तथा गोपाल सिंह ने अपने घराने की परंपरा को कायम रखा। उसमें माधो सिंह का तो विशेष उल्लेख किया जा सकता है, जो वर्षों तक बंबई में वल्लभाचार्य श्री गोकल दास जी महाराज के यहाँ रहे। पर्वत सिंह के छोटे पुत्र गोपाल सिंह दिल्ली विश्वविद्यालय में संगीत विद्या विभाग के अध्यापक थे और आज भी उनके एक पुत्र उसी विद्यालय से संलग्न हैं। यद्यपि जोरावर सिंह तथा उनके वंशज अप्रतिम कलाकार थे, परंतु वे उदार शिक्षक नहीं थे, अतः उनकी शिष्य परंपरा उतनी विस्तृत नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। ग्वालियर के भ्रमण में मुझे ऐसे बहुत कम व्यक्ति मिले जो दृढ़तापूर्वक यह कह सकें कि वे उस परंपरा के शिष्य हैं। विशेष प्रयास के बाद इस परंपरा का जो इतिहास प्राप्त हो सका है वह इस प्रकार है। श्री जोरावर सिंह के प्रमुख शिष्य ग्वालियर निवासी श्री नारायण प्रसाद दीक्षित अग्निहोत्री थे। वे उच्च कोटि के वादक एवं उदार शिक्षक थे। उनकी शिष्य परंपरा ग्वालियर और महाराष्ट्र में फैली हुई है। जोरावर सिंह तथा नारायण प्रसाद इन दोनों गुरु शिष्य के विषय में एक रोचक कथा ग्वालियर के वयोवृद्ध विद्वान पंडित रामचंद्र अग्निहोत्री से सुनने को मिला, जो इस प्रकार है। ग्वालियर दरबार की किसी महफिल में एक बार श्री जोरावर सिंह किसी कारणवश नहीं पहुंच सके। बाहर से कोई बड़ा गायक आया हुआ था, अतः जोरावर सिंह की अनुपस्थिति में ग्वालियर नरेश बड़े व्यग्र हो गए। संयोग से वहां जोरावर सिंह के शिष्य नारायण प्रसाद दीक्षित अग्निहोत्री उपस्थित थे। नरेश के आदेशानुसार नारायण प्रसाद पखावज पर बैठ गए और दरबार की प्रतिष्ठा बचा ली। उन्होंने ऐसी कुशल संगत की कि महफिल की रौनक में चार चांद लग गए। अतिथि गायक ने भी इस युवक पखावज वादक की भूरी भूरी प्रशंसा की। ग्वालियर नरेश भी बहुत प्रसन्न हुए और अनेक भेंट उपहार से उनका अभिवादन किया। दूसरे दिन जब जोरावर सिंह दरबार में पहुँचे तो महाराज ने कहा कि कल तो नारायण प्रसाद ने इतनी अच्छी संगत की कि आपकी अनुपस्थिति मालूम ही नहीं हुई। प्रशंसा सुनकर जोरावर सिंह बहुत प्रसन्न नहीं हुए। कुछ दिनों के बाद नारायण प्रसाद के जीवन में एक भारी दुर्घटना घटी। दुर्भाग्य से किसी विदेशी ने उनके हाथों पर किसी ऐसे तेल की मालिश कर दी कि उनके हाथों की नसें दुर्बल पड़ गईं और वे बजाने के योग्य नहीं रह सके। इस प्रकार द्वेष और स्वार्थ ने एक कलाकार का जीवन नष्ट कर दिया। इस घटना से नारायण प्रसाद जी को गहरा सदमा हुआ और उन्होंने संकल्प किया कि वे अपनी विद्या को अपने वंशजों एवं शिष्यों में बांटकर कला को जीवित रखेंगे। कहते हैं उन्होंने बहुत से शिष्य तैयार किए और आज भी ग्वालियर तथा महाराष्ट्र में उनकी शिष्य परंपरा फैली हुई है। उनके वंश में उनके पुत्र वेंकट राव दीक्षित तथा पौत्र शंकर राव दीक्षित कुशल कलाकार हुए तथा शिष्यों में गणपत राव गुरव का स्थान अग्रण्य है। बड़े बड़े गायक वादक श्री गुरव का लोहा मानते थे। कहते हैं कि कभी कभी पर्वत सिंह भी उनसे कुछ बातें सीखने के लिए चले आते थे। पंडित गणपत राव ने अपने पुत्र माधव राव गुरव एवं अन्य शिष्यों को शिक्षा दी, जिनमें बालकृष्ण पाटकर का नाम उल्लेखनीय है। पृष्ठ संख्या 95। श्री जोरावर सिंह जी के पुत्र सुखदेव सिंह के शिष्यों में उनके दोनों पुत्र पर्वत सिंह एवं कन्हैया और श्री राम प्रसाद तथा उस्ताद बिट्ठू के नाम उल्लेखनीय हैं। श्री राम प्रसाद के पुत्र श्री कला प्रसाद भी अच्छा पखावज बजाते थे। पर्वत सिंह के शिष्यों में उनके तीनों बेटे माधव सिंह, विजय सिंह तथा गोपाल सिंह के उपरांत उनके दामाद जमुना प्रसाद तथा राम प्रसाद पाठक के नाम लिए जाते हैं। राम प्रसाद पाठक से कानपुर के तेज बहादुर निगम ने तबला सीखा था। तदुपरांत श्री रामाराव काटे का नाम भी इसी परंपरा में संबंधित है। श्री माधव सिंह जी ने हीरालाल त्रिपाठी तथा ग्वालियर की एक दूसरी तबला परंपरा के वंशज श्री नारायण प्रसाद रतौनिया को भी सिखाया है। पृष्ठ संख्या 95। ग्वालियर की दूसरी परंपरा। ग्वालियर के रतौनिया परिवार में पिछली तीन पीढ़ियों से तबला तथा पखावज की विद्या वंश परंपरागत रूप से चली आ रही है। श्री नारायण प्रसाद रतौनिया तथा उनके दो पुत्र श्री राम स्वरूप तथा भोगी राम आजकल इस परंपरा को आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व निभा रहे हैं। वैसे उनके परिवार के परदादा गणेश उस्ताद इस परंपरा के आद्य पुरुष माने जाते हैं। गणेश उस्ताद ने किस गुरु से शिक्षा पाई थी इसका उल्लेख नहीं मिलता। उनके पुत्र दयाराम उस्ताद को उनके पिता से ही शिक्षा प्राप्त हुई थी, जो स्वयं अच्छे कलाकार थे। दयाराम उस्ताद के भांजे दाताराम भी नामी कलाकार हुए। नारायण प्रसाद रतौनिया श्री दाताराम के पुत्र हैं। उन्होंने अपने पिता के उपरांत अपने पिता के गुरु भाई दयाराम उस्ताद के शिष्य पंडित राम प्रसाद से, पंडित माधव सिंह से तथा अपने ससुर भिलाई राम से भी तालीम ली। आजकल उनके पुत्र राम स्वरूप तथा भोगी राम अपने वंश के उत्तराधिकारी हैं तथा अच्छे वादकों के रूप में नाम कमा रहे हैं। इस रतौनिया परंपरा में मुख्यतः तबले की परंपरा ही चली आ रही है। ग्वालियर के आधुनिक कलाकारों में रतौनिया भाइयों के अतिरिक्त श्री राजेंद्र प्रसाद रज्जन, उनके भाई सज्जन लाल, उस्ताद फयाज खां, उमेश चप्पूवाला तथा मुकुंद भाले का नाम उल्लेखनीय है। खेद है कि वे सब तबला ही बजाते हैं। पखावज की परंपरा तो ग्वालियर से स्नेह स्नेह विलीन हो रही है। ग्वालियर परंपरा की वादन विशेषता। ग्वालियर परंपरा की बाज सरल मुलायम तथा गंभीर है। वादन में माधुर्य तथा संगत में दक्षता एवं सूझ ग्वालियर परंपरा की प्रमुख विशेषता है। ग्वालियर में दो विविध परंपराएं चली हैं और दोनों परंपराओं में पखावज एवं तबले की विद्या का प्रचार रहा है। श्री जोरावर सिंह तथा गणेश उस्ताद तबला और पखावज दोनों पर समानाधिकार रखते थे, किंतु श्री जोरावर सिंह की परंपरा में अधिकतर पखावज को ही प्रधानता दी गई। यद्यपि पर्वत सिंह ने तबले के कई शिष्य तैयार किए, इसके विपरीत गणेश उस्ताद की परंपरा में विशेष रूप से तबला ही बजता आया है। पृष्ठ संख्या 96। ग्वालियर परंपरा। जोरावर सिंह श्रीमंत जनकोजी राव सिंधिया के राजाश्रित एवं कुदव सिंह के समकालीन थे। इनके पुत्र सुखदेव सिंह हुए और नारायण प्रसाद दीक्षित अग्निहोत्री। पृष्ठ संख्या 97। ग्वालियर परंपरा 2। गणेश उस्ताद दया राम उस्ताद इनके दाता राम उर्फ दान सहाय भांजा हुए एवं राम प्रसाद रतौनिया पुत्र हुए। राम प्रसाद रतौनिया के पुत्र कांता प्रसाद हुए और दाता राम उर्फ दान सहाय के पुत्र नारायण प्रसाद रतौनिया हुए। नारायण प्रसाद रतौनिया के दो पुत्र हुए, राम स्वरूप और भोगी राम।